राम श्रीमद् भागवत कथा महंत श्री 1008 श्री क्षमाराम जी महाराज के मुखारविंद से। राम
हय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन काओ न से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहुम की सकी वो शरण गहुम की सकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी हो अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जग तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी। तुम पालन करता मैं मूरख खलकामी मैं से वक आप स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति वो स्वामी। किस विध मिलू दयामय किस विध दयामय तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो तक मेरे। करुणा है सब बढ़ाओ अपने हाथ बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवाओ स्वामी। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, ओ स्वामी हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।
देहनाथं महिमानः सचन्द चतुरपूर्वे साध्याः सन्धिदेवा ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्मः समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय सार्वभौम सार्वायुग अन्तादापराधात् प्रसिद्धे समग्रपर्यन्ता एकराज्ये तदप्येषश्लोको विदितो मरुतः परिवेष्टारो मूर्तस्यावसन्द्रे आवेक्षितस्य कामप्रेम विश्वे देवास्य पाशरीरि विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्भावभ्याम् धमति सम्पतत्रिज्या वा भूमि जनयन् देव एक सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय ब्रजमण्डलसहिताय श्रीराधाकृष्णा ध्यान नमः यथा लब्धोपचारपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि। श्यावर रामचन्द्र की जय। गौरमुकुरवंशी लाले की जय। श्रीराधाकृष्ण भगवान की जय। श्रीवेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रवणाचार्य श्री परीक्षित महाराज की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। जय श्री राधे।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव। Krishna Govinda Hare Murare।
Krishna Govinda Hare Murare।
He Nath Narayana Vasudeva।
He Nath Narayana
Krishna Govinda Hare Murare।
Shri Krishna Govinda Hare Murare।
He Nath Narayan Vasudeva।
He Nath
Na नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
श्यामवर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी
महाराज की जय
श्री परीक्षित जी
महाराज की जय
श्रीमद् भागवत
महापुराण की जय
अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यम सं पद्यजहत्यजां मनुषै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगारी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना आनन्दधामनिचिदेकरसे द्वितीये तस्मिन्पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तम् सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम् तावद्बलात् स्फुरति हन्तरिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जूः
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक सच्चिदानन्दघन आनन्दकन्द निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार सदा सर्वदा निर्विकार सर्वाधार सर्वांतर्यामी परम दयालु परम कृपालु परमात्मा के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर परमात्मा को प्राप्त हुए सभी संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर परमात्म स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर प्रणाम कर श्रीमद् भागवत में पावन आस्था रखने वाले समस्त सज्जनों माताओं बहनों का यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन कर भगवत कृपा से प्राप्त इस पुण्य वेला में संत महापुरुषों की पावन छत्र छाया में
इस भूलोक का पवित्रतम अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का यह एक अत्यंत विलक्षण जीवन का महोत्सव हम लोग यहां संपन्न करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है। श्रीमद् भागवत इस जीव के कल्याण करने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है और उसमें भी कलयुग के समय इसकी महती आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महिमा प्रसंग में जितनी बातें आज तक कही गई हैं वे सब थोड़ी हैं। आगे जितना जो कुछ कहा जाएगा वो भी कम पड़ेंगी। ऐसी विचित्र इसकी अगाध महिमा है। स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत की अन्य पुराणों में महिमा बड़े विस्तार के साथ लिखी है, परंतु सबसे बड़ी विचित्र बात तो तब होगी जब हम लोग श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से अंत तक बड़े प्रेम के साथ, निरालस्य होकर, सावधानी के साथ, श्रद्धा के साथ सुनेंगे और सुनने पर जो हमारे हृदय में एक विशेष भाव पैदा होगा, एक विशेष श्रद्धा जगेगी, तब हम मान सकते हैं कि वस्तुतः भागवत की महिमा में जो कुछ संतों ने कहा है कितना सटीक कहा है। श्रीमद् भागवत सुनने का मौका उन जीवों को मिलता है जिन पर भगवान की और संत महापुरुषों की अतिशय कृपा होती है। जिस प्रकार कहीं बड़ा भारी दावानल लग रहा हो, जिस प्रकार कोई बड़ी भारी बाढ़ आ रही हो, जहां डूबने की ही डूबने की बातें दिखाई दे रही हो, ऐसे समय में कोई आकर हठात हमें बचा लेता है, इसी प्रकार इस कलयुग के वातावरण में भगवान ने और संत महापुरुषों ने आकर हम लोगों के बचाव के लिए जो तैयारियां की हैं वो कम कृपा नहीं है। उसी के अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत महापुराण का एक ऐसा उपाय है कि जिसके आश्रय से महात्माओं की और संतों की कृपा से हम आसानी से भवसागर से पार हो सकते हैं। आइए आज आप हम सभी भगवान का और महापुरुषों का अपने पर विशेष अनुग्रह मानते हुए श्रीमद् भागवत के महात्म्य प्रसंग के ऊपर विचार करते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की जो महिमा लिखी है उस महिमा को बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग सुने और यह समझें कि ये महिमा जो लिखी है वो हमारे हृदय में भागवत के प्रति प्रेम जगाने के लिए लिखी है और साथ ही साथ भागवत ऐसा अनुपम महिमावान है भी। केवल महिमा लिख देने के लिए महिमा नहीं लिखी है, ऋषियों की दृष्टि और भाव कुछ और ही होता है। जहां तक पहुंचना हम लोगों की कलुषित बुद्धि से पहुंचना बड़ा मुश्किल है, अतः यही हम मान सकते हैं कि संत महात्माओं की वाणी में सर्वत्र सत्यता है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर वे नहीं लिखते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के महिमा में जो लिखा है वो यथार्थ है, सत्य है और वो श्रद्धेय है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान के इस प्रणाम के साथ श्री कृष्ण लिखा है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान के प्रणाम के साथ श्री लगाया, देखा जाए तो ये श्रीमद् भागवत है, इसमें ऐसा कोई स्कंद नहीं मिलेगा जिसमें श्री कृष्ण का पावन नाम नहीं आता हो। कहीं किस रूप में, कहीं किस बहाने से, आदि से अंत तक इसमें हम कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप में श्री राधा जी हैं, लेकिन राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत में स्पष्टतया नहीं मिलेगा। सुना है संतों से, महात्माओं से, कि सुखदेव जी महाराज की राधा नाम में इतनी तन्मयता थी, इतनी प्रियता थी, यदि वे राधा नाम बोल देते तो भागवत वहीं समाप्त हो जाता, वे समाधि में स्थित हो जाते। यों भी श्रीमद् भागवत एक समाधि की भाषा में है, समाधि अवस्था से कहा हुआ ये पावन ग्रंथ है, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये श्रीमद् भागवत केवल भगवान का संकल्प है। तो यहां श्री कृष्णाय वयम नुमः श्री है, इसी के अंतर्गत भगवान की अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं, जिसके साथ ही राधा जी भी श्री के अंतर्गत आ गई हैं। श्री शब्द की बड़ी व्यापकता है। राधा शब्द में श्री शब्द आ सकता था और नहीं आ सकता था, लेकिन श्री शब्द के अंतर्गत राधा शब्द आ ही जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज के भावों की रक्षा करते हुए उन्होंने श्री कृष्णाय वयम नुमः ये मंगलाचरण किया है, और इसी मंगलाचरण के साथ तीन पद दिए हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन विशेषण अपने आप में बहुत विलक्षण अर्थ रखते हैं। भगवान के विषय में लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि हम कैसे माने, उनकी सत्ता को कैसे स्वीकार करें, भगवान को हम क्यों माने, किस प्रकार से माने, मानने के लिए हमारे पास क्या तर्क है। उन सब का एक ही बात में निराकरण कर दिया कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, और भगवान ज्ञान स्वरूप है। सत, चित और आनंद, ये तीनों ऐसी चीज दी है, ये परस्पर में घुले मिले हुए हैं। जो सत है वही चित और आनंद है, जो चित है वही सत और आनंद है, जो आनंद है वही सत और चित है। ये बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं, फिर भी हम लोग भगवान की सत्ता को स्वीकार करने के लिए यदि इनके एक एक पद पर हम विचार करते हैं तो संसार का कोई बड़े से बड़ा नास्तिक भी इस बात को झुठला नहीं सकता कि भगवान है और भगवान की सत्ता है। सबसे पहले सत्ता की बात है। संसार में हम लोग प्रत्येक पदार्थों की एक सत्ता का अनुभव करते हैं। यदि हम सत्ता का अनुभव न करें तो उन पदार्थों में, भोगों में, दृश्यों में हमारा आकर्षण नहीं होता। तत्त्व इंद्रियों के जो विषय हैं उनको हम सत्ता रूप से हृदय में स्वीकार करते हैं, तभी हम विषयों में आकृष्ट होते हैं। अब विचार से देखा जाए तो क्या इन विषयों में सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है, फिर भी ये सत्तावान दिखते हैं, तो कारण क्या है, ये सत्ता किसकी है। नहीं होकर के भी जो है दिखता है, ये है कौन पदार्थ है। शास्त्रों में उसे ही भगवत पदार्थ के नाम से कहा है कि वो भगवान है। अब कोई नास्तिक ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, कोई नास्तिक ये नहीं कह सकता कि जगत नहीं है, कोई नास्तिक यह नहीं कह सकता कि वस्तु नहीं है, पर वो है जो बोलता है कि संसार है, मैं हूं, वस्तुएं हैं, विषय है, दृश्य है, ये जो है यह वास्तव में है, भगवान का ही है। इसलिए भगवान के विशेषण में दिया कि भगवान सद्रूप है। दूसरी बात, हमें संसार का ज्ञान होता है, ये ज्ञान शक्ति भी इतनी व्यापक है, ज्ञान तत्व इतना व्यापक है, यदि ज्ञेय में ज्ञान न हो तो ज्ञाता को ज्ञान नहीं होगा और ज्ञाता के लिए वो ज्ञेय नहीं बनेगा। जैसे कुएं में पानी ना हो तो कोठे में नहीं आएगा और कोठे में नहीं आएगा तो क्यारियों में पानी नहीं जाएगा। बहुत दूर खेत का, बहुत दूर का छोर है, वहां भी उसी कुएं का पानी जाता है जो बहुत गहरा है। कारण कि कुएं में पानी, कोठे में पानी होगा तो खेत के उस अंतिम छोर में पानी जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान तत्व यदि कोई नहीं होगा तो वो ज्ञान तत्व ज्ञाता में भी नहीं आएगा, और वो ज्ञान तत्व ज्ञाता में न आएगा तो ज्ञेय में भी नहीं रहेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञातागत ज्ञान और ज्ञेयगत ज्ञान ये दोनों मिलते हैं, तब ज्ञाता को ज्ञेय का ज्ञान होता है। क्या है ये ज्ञान तत्व? भगवत स्वरूप है। जैसे सत्तत्व है वो भगवत स्वरूप है, इसी प्रकार से ज्ञान तत्व भी भगवत स्वरूप है। और तीसरी बात तो इतनी स्पष्ट है कि जो आनंद तत्व है उस आनंद के लिए हम लोग बहुत लालायित रहते हैं, विषयों से सुख मिले और विषयों में भी तरह तरह से, कानों से सुख मिले, नेत्रों से सुख मिले, नाक से सुख मिले, जीभ से सुख मिले, ये जो चारों तरफ हमारी सुख के लिए दौड़ धूप हो रही है, ये बताता है कि हमारा जीवन ही बताता है कि कोई न कोई आनंद तत्व है। क्योंकि सुनने को भी हमें मिलता है फिर भी सुख नहीं मिलता, हमको देखने के लिए विषय मिलता है, रूप मिलता है, फिर भी जैसा हम सुख चाहते वो नहीं मिलता। कारण क्या है? वो आनंद तत्व है ही, वो हमको नहीं मिल रहा है हमारी गलती से, परंतु उस आनंद तत्व की इच्छा हो रही है तो आनंद तत्व जरूर है। तो सत्तत्व भी है, चित्तत्व भी है, आनंद तत्व भी है। कारण कि इनका अनुभव हमें होता है, इनकी मांग हमारे अंदर है, तो इन सब सत्तत्व के ज्ञान के लिए, चित्तत्व के लिए, आनंद तत्व के लिए एक छोटे से वाक्य में वेदव्यास जी ने लिखा कि श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्री कृष्ण ही सत्तत्व है, यही ज्ञान तत्व है, यही आनंद तत्व है। और बताए कि विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और पालन में ये महाकारण है। जो भौतिक दृष्टि रखने वाले हैं उनको भी ये मानना पड़ता है कि ये भूत किसी न किसी से पैदा हुए हैं। ये पंडाल हम देखते हैं तो मानना पड़ेगा कि पंडाल को बनाने वाला कोई है, इसकी व्यवस्था का संचालन करने वाला कोई है, यहां इतनी बड़ी भारी व्यवस्था की है तो इसके कोई न कोई व्यवस्थापक है। तो भगवान श्री कृष्ण है, वो ही संसार की उत्पत्ति के कारण है और वे ही इसके संचालन के कारण है, और अंत में कोई भी उत्पत्ति विनाश की ओर जाती है तो उसके भी परम अधिष्ठान, परम आश्रय वे ही है। क्योंकि वस्तु उत्पन्न होती है तो किसी न किसी से पैदा होगी, और जो वस्तु नष्ट होती है तो किसी न किसी में लीन होगी। सागर में से तरंगें उठती हैं तो सागर उनका आधार है, और उठी हुई तरंगें सागर में ही दिखती हैं तो भी सागर उनका आधार है, और वो देखते देखते तरंगें सागर में लीन हो जाती है तो भी सागर ही उनका आधार है। तरंग की उत्पत्ति में और तरंग के चलने में और तरंग के लीन होने में, तीनों में ही सागर ही महाधार है। ऐसे ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और इसके विलय में, प्रलय में परमात्मा ही महान कारण है, वे ही परमाश्रय है। इसलिए भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए। और विचित्र बात, तीनों बातों में तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के संताप होते हैं। ध्यान देवें, भगवान की शरणागति अथवा श्रीमद् भागवत का आश्रय तीनों तापों का नाश करने वाला है। विचार करें कि संताप क्यों होता है? संताप किसी न किसी पाप का फल होता है। तो पाप का फल जो ताप है, अब वो पाप तो हो गया, और ये संताप न हो, ऐसा कोई उपाय है क्या कि भगवान की शरणागति है, श्रीमद् भागवत का श्रवण है। तापत्रय विनाशाय का है, पापत्रय विनाशाय नहीं का। क्योंकि यदि ऐसा भी लिख देते तो श्लोक की संगति में तो कोई अंतर भी नहीं पड़ता, परंतु तापत्रय माने भूल से यदि पाप हो भी गया है तो भी अब भगवान की शरण स्वीकार कर ले। भगवान की जो ये मूर्ति रूप है श्रीमद् भागवत, भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, वाणीमय स्वरूप है, इसका आश्रय ले ले तो कोई ताप नहीं होगा। देखो साधन तो हो गया, कारण तो हो गया उसका कार्य न हो, कर्म तो हो गया उसका फल न बने, कितनी विचित्रता है भगवत शरणागति में और श्रीमद् भागवत के श्रवण में। तो ये तापत्रय विनाशाय, इससे सिद्ध होता है कि भगवान बहुत दयालु हैं। केवल सृष्टि को के उत्पन्न नहीं कर देते हैं ऐसी बात नहीं है, वे दया भी रखते हैं, बड़े दयालु हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी उनकी शरण में चला जाएगा तो किया हुआ पाप भगवान नहीं देखेंगे, उस पाप को मिटा देंगे, उसका फल उसको भोगना नहीं पड़ेगा। ये भगवान के तीनों ही विशेषण भगवत तत्व में कितनी महिमा है उस बात को बताते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में प्रणाम किए हैं। और उसके बाद संत महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज कोई सामान्य जीव नहीं थे। एक बार की बात है, भगवान शंकर और पार्वती का बहुत विलक्षण संवाद हो रहा था। बिल्कुल निर्जन स्थान था, कोई भी वहां पर पशु पक्षी भी नहीं था। शंकर भगवान ने करुणित होकर पार्वती को ये भागवत रूपी अमृत है, इस अमृत को पिलाया। उस अमृत को पिलाते हुए ये शंकर भगवान एकदम समाधि में स्थित हो गए, बोल रहे हैं, तन्मय होकर कह रहे हैं और पार्वती जी तन्मय होकर सुन रही थी। देखो कभी कभी श्रोता है वो श्रोता तन्मय होता है और कभी वक्ता तन्मय होकर चलता है। इन दोनों की तन्मयता से एक विचित्र भाव श्रोता के मन में भी और वक्ता के मन में भी पैदा होते हैं, परंतु कभी कभी इन दोनों में जहां भी तन्मयता की कमी आती है वहां थोड़ी कहीं कहीं कमी रह ही जाती है। शंकर भगवान ये सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत अमृत पार्वती जी को। इतने में पार्वती जी समाधिस्थ होते 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 इतनी समाधि में डूब गई कि स्वीकार के अंदर जो एक हुंकृति है, हुंकार है, वह हुंकार करना उन्होंने बंद कर दिया। और उतने ही उसी समय में उस भागवतामृत को वहां पर एक तोती के अंडे ने सुन लिया। वो मरा हुआ अंडा था, परंतु भागवतामृत का जो प्रवाह चल रहा था उसमें भी सजीवता आ गई और पार्वती के स्वरों में वह स्वीकारोक्ति के रूप में हुंकार करने लगा। शंकर भगवान सुनाए जा रहे हैं और उस मरे हुए अंडे ने जब चेतना को प्राप्त किया और वो भी हुंकार भरने लगा तो अंत में शंकर भगवान को ज्ञान हो गया कि भाई पार्वती तो समाधि में स्थित हो गई, ये हूं कौन कर भर रहा है, हूं कौन कर रहा है। इतने में ही जानते हुए उनको कोई देरी नहीं लगी और उसी समय में उन्होंने देख लिया कि कोई एक तोता है, इसने हमारा ये भागवतामृत पी लिया है पार्वती की जगह। उसी समय में चूंकि ये परम ज्ञान है, इस ज्ञान में स्तेय नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, इसको तो बिल्कुल श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे दौड़े। तोता भी घबरा करके वो तोता वहां से चला और कहीं आश्रय प्राप्त नहीं किया, इधर उधर दौड़ता गया कि भाई मेरे पास ये भागवतामृत है, कहां जाऊं, कहां छिपूं, कहां रखूं। इतने में वेदव्यास जी महाराज की पावन कुटिया में वेदव्यास जी महाराज की स्त्री थी, वो वहां पर सो रही थी और उस समय में ये शुक है, तोता है, ये उनके मुख के अंदर मुख के मार्ग से पेट में चले गए। तो जैसे भगवान का जन्म दिव्य होता है ऐसे ही कई महापुरुषों का जन्म भी दिव्य होता है। तो सुखदेव जी महाराज मुख के मार्ग से पेट में गए, थोड़ी देर में देखा कि वहां उस अपनी पत्नी के पेट में वेदों की ऋचाएं निकल रही हैं, बड़े दिव्य ज्ञान की बातें निकल रही हैं। वेदव्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, यहां ये वेद की ऋचाएं पेट में बोलने वाला जीव कौन हो सकता है। तो वेदव्यास जी ने प्रार्थना की कि हे जीवात्मन, जो भी तुम हो, तुम अपना परिचय दो, तुम बाहर आओ। तो वो पेट में गए वे सुख कहने लगे कि हम पिताजी बाहर आना नहीं चाहते हैं, हम बाहर थे तो बाहर में एक ही बात अच्छी थी कि हमको ये भागवत सुनने को मिला, परंतु अब हम वापस बाहर आएंगे तो ये संसार की माया ऐसी है, कहीं हम उसमें उलझ जाएंगे तो फिर ये हमारा भागवतामृत कहां सुरक्षित रहेगा, यहीं रहने दीजिए और कोई दूसरा उपाय कीजिए जिससे ये भागवतामृत सुरक्षित हो जाए। तो कहते हैं कि भाई बताइए, आपके इस अमृत की रक्षा के लिए हम क्या उपाय करें। तो कहा, भगवान श्री कृष्ण यदि आकर हमारे पर कृपा करें, वो हमको दर्शन देवे और वो जैसे तैसे हमारे इस भागवतामृत को बचा लें तो बचा सकते हैं, उनकी माया का प्रभाव मेरे पर न पड़े, ऐसी भगवान कृपा करें तो ये बात हो सकती है। तो श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को बुला लाए और बुला करके भगवान ने उनको अभय प्रदान कर दिया अपनी माया से। वे ही सुखदेव जी महाराज वहां अपने वेदव्यास जी महाराज के यहां अवतार लिए हैं और जो ही वे पेट के बाहर आए, कहते न उनके कोई संस्कार है न किसी प्रकार की कोई बात है, जो ही आए त्यों ही चले गए। तो अब विचार आता है कि उनका संस्कार क्यों नहीं हुआ। तो वही संस्कार तो वहां होता है जहां विकार की संभावना है, जहां कोई विकार नहीं तो वहां कोई संस्कार की जरूरत भी नहीं। न तो सुखदेव जी महाराज के जन्म के लिए, जन्म के विषय में कोई विकार है, न उनके अंतःकरण में कोई विकार है, न उनकी क्रियाओं में कोई विकार है। इसलिए जैसे शरीर में मैल नहीं है तो साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है, दाढ़ी नहीं है तो हिजामत करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही सुखदेव जी महाराज के मन में कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, तो उनके लिए संस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। अब सुखदेव जी महाराज जो ही अवतार लिए, जन्म लिए, त्यों ही वे माता पिता को छोड़कर, उस आश्रम को छोड़कर सीधे ही जाने लग गए। तो इतने में वेदव्यास जी महाराज विरह से कातर हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और हे बेटा ऐसे वो आवाज लगा रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी महाराज हैं, पीछे पीछे दौड़े भगे बिचारे बूढ़े वेदव्यास जी महाराज जा रहे हैं। अब यहां कोई शंका कर सकते हैं कि भाई वेदव्यास जी महाराज जैसे परम ज्ञानी जिन्होंने वेद का चार विभाग किया, 18 पुराण लिखे, दूसरे शब्दों में हम कहें कि सृष्टि के इस ज्ञान को जितना विस्तार से वेदव्यास जी ने लिखा है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये वेदव्यास जी से सारा ज्ञान उच्छिष्ट हुआ है। वेदव्यास जी के पास जो ज्ञान है वही सबके पास गया है और जो ज्ञान वेदव्यास जी के पास नहीं आया वो किसी के पास नहीं आया। ऐसे परम ज्ञानी भी यदि बेटे के लिए दौड़ते हैं तो बेचारे सामान्य आदमी बेटों से प्रेम करें, मोह करें तो आश्चर्य क्या है, परंतु ऐसी बात नहीं है। वेदव्यास जी महाराज कोई पुत्रत्व उनके पीछे नहीं गए हैं, वेदव्यास जी महाराज बहुत विचित्र भाव से गए हैं। ये बताया है कि वेदव्यास जी महाराज ज्ञान की कला है, साक्षात भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार दो प्रकार से हैं, एक में भगवान की लीलाओं की प्रधानता है और एक अवतार में भगवान के ज्ञान की प्रधानता है। भगवान ने ज्ञान का विस्तार किया है और भगवान ने अपने लीलाओं का विस्तार किया है। 24 अवतारों में इस प्रकार से दो विभाग है, उनमें वेदव्यास जी महाराज के रूप में भगवान अवतार लिए ज्ञान का विस्तार करने के लिए। अब वो ही ज्ञान के ये श्री वेदव्यास जी महाराज परम अधिष्ठान है और इधर सुखदेव जी महाराज है, ये वैराग्य के अधिष्ठान है, वैराग्य की मूर्ति है। तो वास्तव में सुखदेव के पीछे वेदव्यास जी नहीं गए हैं, पुत्र के पीछे बेटा नहीं गए हैं, बल्कि वैराग्य के पीछे ज्ञान गया है। तभी वास्तव में ज्ञान की शोभा है कि वो वैराग्य के पीछे जाए, ज्ञान तो हो लेकिन ज्ञान वैराग्य के पीछे नहीं है, वैराग्यानुगामी ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान की शोभा नहीं है, उस ज्ञान की पूर्णता नहीं है। परंतु वैराग्य जिसके मन में है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान के पीछे जाए, क्योंकि वैराग्य अपने आप में बहुत ऊंची बात है। इसलिए सुखदेव जी महाराज के पीछे जाने का अर्थ वैराग्य के पीछे ज्ञान को जाना है। अब वो बेटा बेटा बोलते हैं तो वो वृक्षों के झुरमुटों में से होके जा रहे हैं तो वृक्षों में से भी आवाज आ रही है हे बेटा जो शब्द वेदव्यास जी बोल रहे हैं वे वैसे के वैसे प्रतिध्वनि के रूप में उनको बेटे की आवाज आती है। होता भी है जैसे कोई कुएं के बाहर बोलेगा तो कुएं में से वही स्वर और वही अक्षर सुनने को मिलेंगे। ये ध्वनि और प्रतिध्वनि है तो प्रतिध्वनि में जब बेटा 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 ऐसे कई आवाज सुनी तो वेदव्यास जी को ज्ञान हुआ कि भाई ये इतने जने बेटा क्यों बोलते हैं कि ओहो यही मनुष्य भूल करता है। मनुष्य एक जन्म के संबंधों को लेकर इतना प्रगाढ़ हो जाता है वो भूल जाता है कि भाई ये संबंध तो जब तक सृष्टि में रहोगे तब तक होते ही रहेंगे। मानो ये वृक्ष मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि हे व्यास तुम आज इसके बेटा हो तुम आज इसके पिता हो ये तुम्हारा सुखदेव बेटा है तो ऐसे तुम भी कभी हमारे बेटा रहे होंगे तो इस सृष्टि के इन क्षणिक संबंधों को इतना नित्य मानकर क्यों विफल हो रहे हो। इस प्रकार से मानो वे शिक्षा दे रहे हो तो पुत्रीति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। जिनके पीछे वेदव्यास जी चल रहे हैं और जो संपूर्ण ऋषियों के माननीय हैं और इतना ही नहीं सर्वभूत हृदयम सर्वेषां भूतानां हृत्सु अयति प्रविशति इति सर्वभूत हृदय संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जिसने प्रवेश कर रखा है ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। देखो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने की बात भगवान के लिए मिलेगी परंतु यहां सुखदेव जी महाराज के लिए बात आई है। क्या बात है ये सुखदेव जी महाराज बताया ना कि वैराग्य के स्वरूप है तो संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा कि जिसके हृदय में वैराग्य न हो। वैराग्य को हम कायम न रख सके सुरक्षित न कर सके वैराग्य को न समझे ये बात अलग है परंतु वैराग्यवान सभी प्राणी हैं। कितने ही हम भोगों में पदार्थों में द्रव्यों में आकृष्ट हो जाए फिर भी हमारी उनसे अरुचि होती है। मूर्खता से हम आकृष्ट होते हैं लेकिन प्राकृतिक विधान के द्वारा हमें उनसे अलग होना पड़ता है। तो ये अलग होना जो स्वाभाविक रूप से अलग होना ये क्या है ये सुखदेव तत्व है ये वैराग्य तत्व है संपूर्ण प्राणियों के हृदय में है ये बात। जैसे सामान्य से सामान्य प्राणी भी घोंसलों में रहता है परंतु वो भी उस घोंसले को थोड़ी देर के लिए छोड़ता है। हम भी अच्छे से अच्छी सवारी में बैठना चाहेंगे थोड़ी देर बैठेंगे परंतु फिर उसे जीव उब जाएगा हम उतर जाएंगे। बढ़िया से बढ़िया मकान में रहेंगे परंतु फिर भी बाहर घूमने की इच्छा पैदा होगी। अच्छे से अच्छे बगीचे में चले जाएंगे फिर भी उसको छोड़कर और जगह जाने की इच्छा होगी। जो जो तत्त्व इंद्रियों के जो तत्त्व विषय हैं वे सर्वदा प्रिय नहीं है और एक समान प्रिय नहीं है। स्वाभाविक अरुचि पैदा होती है क्यों होती है कि हमारे हृदय में वैराग्य विराजमान है वही वैराग्य सुखदेव का स्वरूप है। ऐसे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वैराग्य रूप से विराजमान ऋषि श्रेष्ठ श्री सुखदेव मुनि को आ नतोस्मी माने मैं आ समन्तात नतोस्मी खूब अच्छी तरह से बड़ी श्रद्धा के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भगवान को प्रणाम कर लिया और संत महापुरुषों को प्रणाम किया। अब उसके बाद महिमा में बता रहे हैं कि एक बार की बात है सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान थे। सूत जी महाराज की बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं कि सूत जी महाराज महामतिम बड़े बुद्धि वाले थे। सुखदेव जी महाराज के ये श्रीमुख से साक्षात भागवत कथा को सुने हुए थे। परीक्षित की उस सभा में सूत जी महाराज भी बैठे हुए थे। कितना ऋषियों के मन में आश्चर्य हो रहा है कि ओहो सुखदेव जी के श्रीमुख से सुने हुए सूत जी हमको ये कथा सुनाएंगे। अर्थात उन ऋषियों के मन में सुखदेव के वाक्यों के प्रति महान आदर था इसलिए उनके श्रोता बने हुए सूत जी को उन्होंने आज वक्ता बनाने में कोई संकोच नहीं किया। वहां बड़े बड़े विद्वान पुरुष थे ब्राह्मण लोग थे परंतु फिर भी चूंकि सुखदेव जी के मुख से सुने हुए थे और उस विषय का जिन्होंने हृदय में अवधान कर लिया धारण कर लिया था उस विषय को सूत जी ने अतः सूत जी उन सब के आदरणीय बन गए। तो कथा मृत रसा स्वाद कुशल है शौनक है शौनिक ऋषि है सामान्य ऋषि नहीं। कथा रूपी अमृत के रस का आस्वादन करने में महान कुशल है शौनक जी। वे भी शौनक जी सूत जी से कथा सुनना चाहते हैं और कथा सुनने की इच्छा उनमें है बड़ी नम्रता से उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, कथा सारम आख्यायी, आपने तो बहुत सी कथाएं सुनी है सुखदेव जी के मुख से। आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। देखो, ये जो सामान्य अंधकार है उसको तो एक सूर्य की थोड़ी सी आभा पर्याप्त है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार हो और उसके सामने करोड़ों सूर्य ठहर जाए, करोड़ों सूर्य उत्पन्न हो जाए, तो क्या वो अज्ञान ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार से वो जो अज्ञान है, ज्ञान रूपी जो सूर्य, और उसमें भी करोड़ों करोड़ों ज्ञान सूर्यों की आभाओं को लिए वे आप हैं, अर्थात आप में अज्ञान का लेशांश भी नहीं है। आपके मुख से जो वाक्य निकलेगा, आप जो कुछ बात बताएंगे, वो पुराण सम्मत होगी, वेद सम्मत होगी, और साथ साथ मम कर्ण रसायनम हमारे कानों के लिए भी बहुत पवित्र बात होगी, बड़ी श्रेष्ठ बात होगी। देखो, सभी बातें हृदय को प्रिय नहीं लगती हैं, माने जो बात कान को प्यारी लगेगी वो बात कभी कभी मन को प्यारी नहीं लगती, और कभी मन को प्यारी लगती है कोई बात परंतु कान को प्यारी नहीं लगती। लेकिन आप ऐसी बात कहेंगे कि जिसमें मेरे कान भी और मेरा मन भी दोनों ही एक विलक्षण रसायन को प्राप्त करेंगे, दोनों के लिए परम औषधि की बात होगी। इसलिए आपके वचनों में हमारे अज्ञान भी दूर होंगे, और वो बड़े मीठे और कोमल शब्दों के द्वारा जब आप समझाएंगे तो वो बात भी हमारे हृदय में बैठ जाएगी। इस समय में आप हमारी थोड़ी दशा का विचार कर लो। ये जीव कलयुग को प्राप्त हो रहा है, और कलयुग के अंदर तरह तरह के दोष जो दिखाई देते हैं उनसे ये महान आक्रांत हो रहा है, और ये आसुर भाव को प्राप्त हो गया है। बड़े मंदभागी जीव है, और तरह तरह के उपद्रव इनके साथ है। देखो, जीवन में सुख मिले और बुद्धि न हो तब भी कोई बात नहीं, परंतु सुख भी नहीं मिलता है, बुद्धि भी नहीं है, आयु भी बहुत थोड़ी है, और जितनी आयु है उसमें भी तरह तरह के उपद्रव लगे हैं। ऐसे क्लेशाक्रांतस्य, क्लेश से आक्रांत इस जीव के कल्याण के लिए कौन सा आपने सबसे श्रेष्ठ उपाय ढूंढा है, जरा कृपा करके आप हमको ये बता दीजिए। कारण कि जो संत महापुरुषों के पास चीज मिलती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। स्वर्ग में चले जाएंगे, कल्प वृक्ष मिलेगा, तो सुरद्रु स्वर्ग संपदम, वो हमको ज्यादा से ज्यादा स्वार्गिक संपत्तियां दे देगा, इससे ज्यादा वो कल्प वृक्ष क्या देगा। कहते हैं चिंतामणि ले लो, कि चिंतामणि भी ले लेंगे तो संसार के पदार्थ मिल जाएंगे, चिंतामणि लोक सुखम। सबकी एक एक सीमा बंधी हुई है, और वो भी सीमा ऐसी है जो खंडित सीमा है। स्वर्ग की संपत्ति भी छीन ली जाएगी, लौकिक सुख है वो भी छीन लिए जाएंगे, परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संत महापुरुष कृपा करके जो दिव्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा जीव को जो मिलता है वो निस्सीम मिलता है। योगी दुर्लभ वैकुंठ स्थान अथवा योगी दुर्लभ वैकुंठ परमात्म स्वरूप वो मिलता है। इसलिए संसार में संत महात्माओं के समान कोई दाता नहीं है, इनके समान कोई दाता हो सकता नहीं है। तो आप जो कुछ हमें सुनाएंगे वही हमारे लिए रसायन है, वही हमारे लिए औषध है, वही हमारे लिए पथ्य है। हमारी बीमारी हमने रख दी है, अब इस विषय में जो आपके दृष्टि में उचित लगे वो आप हमको औषध दीजिए, हम आपसे यही प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से सौनक जी महाराज ने अपने मन की जिज्ञासा बहुत से ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज के सामने रखी है। इस प्रकार सौनक जी महाराज ने इस कलयुग के अंदर क्लेशाक्रांत जीव की दुर्दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए क्या साधन किया जाए, ये जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज सौनक जी से कहने लगे, हे सौनक, हम तुम्हारे इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुमने लोगों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया उसके उत्तर में मैं बहुत विचार पूर्वक तुमको कहना चाहता हूं। मेरे विचार में संसार का भय दूर करने के लिए और संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला और भगवान श्री कृष्ण को परम संतोष प्रदान कर देने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र है, जो कलयुग के अंदर सुखदेव के द्वारा कहा हुआ है, यही इस जीव का परम औषध है। मैं ये समझता हूं कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता, और एक जन्म की बात नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये भागवत शास्त्र जन्म जन्मांतरों के पुण्य से कोई मिल जाए, भगवान की विशेष कृपा हो तो मिल जाए, इसके अलावा इसके मिलने की इतनी सुलभता नहीं है। क्या बताऊं, ये मेरे सामने की घटना है। जिस समय में राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर विराजमान थे, उसी समय में देवता लोग अमृत का कलशा लेकर आए और सुखदेव जी को नमस्कार करके प्रणाम करके कहने लगे कि हे सुखदेव, ये परीक्षित तो मृत्यु के भय से न आकर बैठा है, आप ये अमृत का कलशा इसे प्रदान कर दीजिए और कथा रूपी आप अमृत हमको पिला दीजिए। ये बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, यदि आप कथा अमृत पीने के लिए यहां बैठने की अनुमति चाहते तो हम आपको आराम से बैठने के लिए बोल सकते थे, परंतु तुमने भागवत की महिमा को समझा नहीं और देवामृत को कथामृत के साथ जोड़ा, तुम्हारे स्वर्गामृत को इस भागवतामृत के साथ जोड़ा है, इसके साथ जो तुमने तुलना की है, तुम इस भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी भागवत में श्रद्धा नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच है क्व मणिर्महान। हे देवताओं, क्या किसी काच की और मणि की तुलना हो सकती है? क्या कभी तुम्हारे अमृत की और इस कथामृत की तुलना हो सकती है? नहीं, तुम अश्रद्धालु हो, तुमको हम कथामृत नहीं देंगे। चाहे हमारा परीक्षित 7 दिन में मर जाए, चाहे अभी मर जाए, हम इस कथा का अपमान नहीं सहेंगे। तुम लोग अभक्त हो, अतः न ददौ से कथामृतम। ये कथामृत सुखदेव जी ने उनको नहीं दिया, इसलिए मेरे मन में ये बात जच गई कि ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये भागवती कथा अत्यंत दुर्लभ है और इतनी दुर्लभ है कि स्वयं ब्रह्मा जी को भी इसके विषय में बड़ा आश्चर्य हुआ है। राजा परीक्षित की 7 दिन के अंदर इस कथा की कथा से मुक्ति को देखकर स्वयं ब्रह्मा ने अपने सत्य लोक के अंदर एक तराजू ले ली और जितने कल्याण करने के साधन है वो एक चेले में रख दिए और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत रखा, तो गौरवेण इदम महत, ये भागवत है इतना भारी रहा, इतना भारी रहा कि लघुनी अन्यानी जातानी, जितने दूसरे साधन थे वो हल्के थे, भागवत की महिमा स्वयं ब्रह्मा जी ने देख ली, इसका भारीपन देख लिया। तो मैं तो यही कहता हूं कि श्रीमद् भागवत है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसका पठन करने से और इसका श्रवण करने से भगवान के लोक की वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भागवत को सुनने के लिए भी कई प्रकार की विधियां हैं, परंतु सबसे उत्कृष्ट विधि सप्ताह विधि है और इस सप्ताह विधि को नारद जी ने सनकादियों से सुना था। यद्यपि नारद जी ने भागवत को तो पहले सुन लिया था, परंतु इसके कई विधि विधान को नहीं सुना था। इस विषय में न स्वयं नारद जी को भी आश्चर्य हुआ है। पूछा कि महाराज, नारद जी का और सनकादिका का कैसे मिलना हुआ और नारद जी को ये भागवत क्यों सुननी पड़ी, ये बात आप हमको बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, बहुत सी बातें हमारी और सुखदेव जी की एकांत में हुई है। सुके न मम यत प्रोक्तम रह शिष्यम विचार्यच, मुझे बहुत श्रद्धालु समझ करके एकांत में बात कही थी, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार की बात है, ये सनकादि ऋषि सत्संग के लिए बद्री का आश्रम में गए। वहां वे आपस में बैठते थे, ब्रह्म चर्चा करते थे। उन्होंने अकस्मात नारद जी के दर्शन किए। नारद जी भी ब्रह्मा जी के बेटा है, सनकादि भी ब्रह्मा के बेटा है, इनका आपस में बड़ा प्रेम रहा। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, क्या बात है, आप बहुत चिंतित मालूम देते हो, आप तो मुक्त संग हो, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए इच्छा नहीं है तो दुख भी नहीं है। जितने दुख पैदा होते हैं वो इच्छाओं को लेकर होते हैं, तो आप तो मुक्त संग है, फिर आपके मन में इतनी चिंता किस बात की है। नारद जी कहने लगे, देखो जी सनकादि ऋषियों, बात तो यही है कि जिसके मन में कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, उसके दुख नहीं रहना चाहिए, परंतु मेरे एक नए ढंग का दुख पैदा हो गया। मैं जरा अपनी बात बताऊं, मैंने ये देखा कि संसार में सारी सृष्टि में सबसे बढ़िया जगह पृथ्वी है, तो मैं भगवान के वहां से रवाना होकर पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर भी कोई सारी जगह अच्छी नहीं होती, जहां पुष्कर है, प्रयागराज है, काशी है, गोदावरी है, सेतुबंध रामेश्वर है, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, ये जो तरह तरह के तीर्थ हैं, इन तीर्थों में मैं गया, परंतु क्या बतावे, तीर्थों में गए कहीं पर भी शांति नहीं मिली। और कलयुग के साथ तो अधर्म ने आजकल मित्रता कर रखी है, तो सब जगह धर्म में बाधा आ रही है। लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, सत्यम नास्ति वाणी में पता ही नहीं चलता है, झूठ बोलते रहते हैं, और जरा सी भी सहिष्णुता नहीं है, किसी पर भी कोई थोड़ी भी दया कर दे ये बात भी नहीं दिखती। लोग केवल अपने आराम और भोग में लगे हुए हैं, जिससे अपना निर्वाह कैसे हो, भोग सामग्री कैसे मिले, इसमें बड़े सावधान हो रहे हैं। हमने देखा कि भाई चलो जो संत महात्मा है उनके पास जाओ, तो भाई असली संत मिलने बड़े मुश्किल हो गए, पाखंड ही पाखंड प्राय करके पृथ्वी पर दिखाई देने लग गया। चलो विरक्तों के पास जाओ, संतों के आश्रमों में जाओ, तो आश्रमों में ऐसी ऐसी सामग्रियां दिखने लगी कि जो गृहस्थियों के पास सामग्री नहीं। कहने को विरक्त है लेकिन उनके पास परिग्रह बहुत है, कहने के लिए संत है लेकिन पाखंड उनके पास बहुत है। चलो भाई गृहस्थियों की क्या दशा है, कि गृहस्थियों की ये दशा है कि घर के अंदर पुरुष की विचारों की प्रधानता नहीं है, वहां स्त्री कहेगी वो बात होगी और पुरुष कहेगा वो बात नहीं होगी। तरुणी प्रभुता गये है और स्त्रियों के प्रभुता के कारण से घर में ज्यादा विचार शाले के द्वारा, माने शाल को बुद्धिदायक है, अपने साला जी जो बात कहेंगे वो बात ज्यादा माननी होगी, क्योंकि वो स्त्री का भाई है। माने पुरुषों में चलेगी तो स्त्री के भाई की चलेगी, पुरुष के भाई की नहीं चलेगी। और पति और पत्नी जो परस्पर में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए थे, एक दूसरे के लिए अपने सुख का त्याग करने वाले थे, एक दूसरे के हित में लगे रहने वाले थे, जो दोनों मिलकर एक कहलाते थे, हमने देखा कि घर गृहस्थी भी वे पति पत्नी भी कलकनम बराबर लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। यदि कोई सा दिन बिना लड़ाई झगड़े के निकल गया तो वो भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि महाराज बड़ी कृपा हुई, न तो आज पत्नी कुछ बोली है और न ही पति कुछ बोले हैं। इस प्रकार से गिन गिन करके वे दिन निकालते हैं। तीर्थों में गए तो तीर्थों में जाके देखा कि बहुत वहां पर पाखंड ही पाखंड है। आश्रमा यवन ही रुद्धा, यवनों ने दुष्टों ने साफ जगह अपना कब्जा कर रखा है। इस प्रकार से ये कलयुग की जो अग्नि है इसने सारे कल्याण के साधनों को भस्म कर दिया है। बहुत मैं घबराया, मैंने देखा कि ओहो ये जो अनाज के व्यापारी है ये अनाज को महंगा कर करके लोगों की भूख के ऊपर धनी होना चाहते हैं, और शिवशूला द्विजातय है, और ब्राह्मणों को देखा तो ये ब्राह्मण वैदिक क्रियाओं को करने के लिए अपने ज्ञान को बेच डालते हैं, स्त्रियों को देखा तो वे अपना धर्म गमाए हुए बैठे हैं। बहुत घबराया, कलयुग के इन पापों को देखकर मैं घबराया। घबरा करके मैंने देखा, चलो यमुना के किनारे भगवान ने वहां बांसुरी बजाई थी, लीलाएं की थी, चलो वहां चलेंगे। मैं यमुना नदी के तट पर आया, यहां आया भगवान की लीला समझकर, लीला भूमि समझ करके मैंने यही सोचा कि यहां बड़ा भारी आनंद मिलेगा, परंतु यहां आने पर तो मेरे और ज्यादा तकलीफ हो गई। हे मुनीश्वरों, मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, वो मैं आपको सुनाता हूं। मेरा तो देखा हुआ है और आपका ये सुना हुआ है। आश्चर्य ये था, एक जवान स्त्री है, और उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष हैं और बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं जवान स्त्री की, तो वे दोनों बूढ़े हैं, वो उसके बेटा हैं और वे लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं और वो उनकी माँ है, बड़ी जवान है, बहुत सुंदर है और वो बड़ी दुखी हो रही है, रो रही है उनके सामने। इन सब को देख करके मेरे मन में आश्चर्य हुआ, तो मैं वहां पहुंचा। मेरे पहुंचते ही उस स्त्री ने कहा, ओ महात्मन जरा ठहरो ठहरो, आपके दर्शनों से तो हमारे सारे पाप दूर हो गए, बड़ी शांति मिल रही है। ओह बहुधा तब वाक्येन, आप कुछ ऐसी बात सुनाओ कि मेरे चित्त को शांति मिले। तो मैंने उनसे पूछा, अरे भाई ये आप लोगों का समुदाय क्या है, आपका परिचय क्या है? मैंने पूछा आप कौन है, ये बूढ़े बूढ़े दो आदमी यहां चेतना शून्य हुए पड़े, ये कौन है? और कहा पद्म लोचना, और आपकी सेवा के अंदर ये और स्त्रियां हैं, इनका भी परिचय क्या है, आपके दुख का कारण क्या है? वो बोली, स्त्री बोली कि देखो नारद, मेरा नाम भक्ति है, मेरे दो बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। अब देखो भक्ति से ज्ञान और वैराग्य हो जाता है, जिसके पास भगवान की भक्ति है उसके ज्ञान और वैराग्य हो ही जाते हैं, तो ये भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। वो कहने लगी, मेरे दोनों बेटा जाने क्या बात हो गई, ये काल योग के द्वारा ऐसा ही कोई प्रारब्ध का योग माने या समय का चक्र माने कि ये दोनों के दोनों जर्जरित हो गए, बूढ़े हो गए हैं, गंगा आदि नदियां मेरी सेवा में लगी हुई है। अब मेरी बात आप सुनो, मैं द्रविड़ देश में तो पैदा हुई, कर्नाटक में जाकर बड़ी हुई और थोड़ा महाराष्ट्र में भी मेरा विकास हुआ, लेकिन गुजरात में आते 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 मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। कारण कि कलयुग के अंदर लोगों ने तरह तरह से मेरे अंग खंडित कर दिए। अंग खंडित करना माने भक्ति का एक पक्ष तो ले लिया और दूसरे पक्ष को उन्होंने नीचा समझा, माने जो आज जो सिद्धांत निर्गुण निराकार का है, उस निर्गुण निराकार पर चलने वालों ने सगुण साकार को छोटा माना, उसका खंडन किया। इसी प्रकार से सगुण साकार वालों ने निर्गुण निराकार का खंडन किया, तो ऐसे खंडन मंडन के अंदर मेरे अंग हैं वो खंडित हो गए। मैं अपने बेटों को लेकर यहां वृंदावन में आई, जाने क्या हुआ, मैं तो यहां एकदम नवी हो गई, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों यहां आते ही बूढ़े हो गए। अब मैं यहां इस स्थान को छोड़कर जाना चाहती हूं, पर जाऊं कैसे, ये दोनों बेटा कुछ चेतना वाले हो जाए तब न जाऊं, ऐसे कैसे मैं जा सकती हूं। इसलिए मैं बहुत स्वयं विस्मय के अंदर हूं, आश्चर्य में हूं, अब मेरा इलाज क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हे नारद तुम ही सोचो और विचारो, बताओ। नारद जी कह रहे हैं कि हे सनत कुमारो, मैंने उस समय में बड़े सावधानी से उनकी बात सुनी और सुन करके मैंने कहा, देखो भाई जब कोई भी बड़ी भारी विपत्ति आ जाए और कोई उसका उपाय समझ में न आवे तो भाई भगवान की शरण होना चाहिए और मन में ये विश्वास करना चाहिए कि नहीं, भगवान कल्याण करेंगे। कितनी बड़ी भारी विपत्ति आ जाए, सबसे पहले हमारे मन में यही भाव आना चाहिए कि भगवान ने अच्छे के लिए ही कोई ये थोड़ी विपत्ति भेजी होगी। तो न विषादस्त्वया कार्य है, विपत्ति के समय में कभी भी विषाद नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ ये मानना चाहिए कि भगवान हमारा भला करेंगे। इस प्रकार से नारद जी ने ये बात कही और फिर कहा कि देखो हे बाले, ये कलयुग का समय है, यहां आचार विचार सब लोगों के लुप्त हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती है, यहां संतों पर विपत्ति आती है, दुष्ट लोग यहां हर्षित होते हुए दिखाई देते हैं, सब ये कलयुग का ऐसा ही प्रभाव है। आप थोड़ा धैर्य धारण करो, ये पृथ्वी इस समय में देखने लायक नहीं रह गई है, शेषनाग स्वयं भार के अंदर दबे चले जा रहे हैं, मंगलम नापि दृश्यते, यहां कोई चीज अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, सब जगह अमंगल ही अमंगल हो रहा है। इसी कारण से इस वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं रहा, क्योंकि ये भगवान की लीला भूमि रही। भगवान का नाम संकीर्तन और लीलाओं का श्रवण तो कथन तो होता है, इसलिए तुम तो नबी हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कौन पूछता है। थोड़ी वैराग्य की बात कहेंगे तो लोग तत्काल कह देंगे कि ये वैराग्य हमसे नहीं होता, अथवा ज्ञान की बात कहेंगे तो कह देंगे कि ये ज्ञान हमसे नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो अत्र इमौ ग्राहका भावात, यहां इन दोनों का कोई ग्राहक नहीं रहा है, इसलिए ये इस प्रकार से अचेतन हो रहे हैं। भक्ति ने कहा कि महाराज कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ, ये परीक्षित है, इसने इस कलयुग को क्यों आश्रय दे दिया? यदि ये कलयुग नहीं रहता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और भगवान तो भाई सब जगह विराजमान है, वो ऐसा अधर्म देखते कैसे हैं? ये भक्ति का एक विचित्र प्रश्न है, और प्राय करके लोग भी यही प्रश्न कर लेते हैं कि जब भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, इतना दुराचार भगवान सह कैसे रहे। स्वयं भक्ति ने भी प्रश्न कर लिया कि करुणा परेण हरिणापि अधर्म कथम ईक्षते। भगवान बड़े दयालु माने जाते हैं, वे इस पाप को कैसे सह रहे हैं, ये मेरे मन में संदेह है। नारद जी कहने लगे, देखो आपने भगवान के विषय में पूछा है तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, इसमें कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए। भगवान कैसे सहते हैं? जैसे कोई बालक है और माता की गोद में था और वो छूट करके नीचे आया, खिसक करके नीचे आया और कादे कीचड़ में पड़ा है और माँ वहीं पास में खड़ी है, माँ कहती है उठो, तो वो बालक है वो उठता नहीं, कादे में पड़ा रहता है, तो भी माँ कहती रहती है उठो लेकिन स्वयं नहीं उठाती है। अब लोग तो कहेंगे कि भाई देखो कैसी माँ है, अपने बच्चे को कादे कीचड़ में देख रही है फिर भी उठा नहीं रही है। परंतु माँ देखती है कि नहीं नहीं, बच्चे के अंदर स्वयं के अंदर उठने की क्षमता आनी चाहिए। तो माँ देख रही है लेकिन बालक यदि उठने का प्रयास नहीं करता है तो आज नहीं करेगा तो कब करेगा, उसकी प्रयास की ओर देखे। और यदि वो प्रयास करने लगे और उस प्रयास में कहीं कमी रह जाए तो माँ उसको तत्काल उठा लेती है, परंतु वो प्रयास नहीं करता है तो माँ भी कहती है अच्छी बात है, बैठे रहो, कितने दिन रहोगे, आखिर तुमको उठना तो पड़ेगा ही। इस प्रकार से जैसे मां सहती है, ऐसे ही कलयुग के अंदर जो चिपटे हुए, कलयुग के अंदर डूबे हुए जो प्राणी हैं, जो इससे निकलना ही नहीं चाहते हैं, उनको भगवान सह रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल इनको निकलना पड़ेगा। और जो भगवान को इस प्रकार से पुकार लेते हैं इस कलयुग के कीचड़ से दूर ऊपर उठने के लिए, उनको भगवान पूरी सहायता देते हैं।